समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
आज राष्ट्रीय ध्वज अंगीकार दिवस है। आज ही के दिन 1947 को राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को भारत के संविधान द्वारा अपनाया गया था। सभी श्रोताओं को राष्ट्रीय ध्वज अंगीकार दिवस की शुभकामनाएं।
Yes, Manoj, indeed, this significant event symbolized the hopes and unity of India during our struggle for independence. And of course, the design of the flag itself represents our diversity and aspiration. So peace, unity and love to all. On that note, let's welcome our listeners to another interesting edition of Aaj Savere. Manoj, let's begin with some news headlines.
Ji. उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लिखे पत्र में श्री धनखड़ ने कहा कि स्वास्थ्य प्राथमिकता और चिकित्सा परामर्श का पालन करते हुए उन्होंने तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे दिया है। श्री धनखड़ ने अपने कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति के निरंतर सहयोग के लिए उनका आभार व्यक्त किया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मंत्री परिषद के प्रति भी कृतज्ञता व्यक्त की। श्री धनखड़ ने कहा कि प्रधानमंत्री का सहयोग और समर्थन अमूल्य रहा है और उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान बहुत कुछ सीखा है। उन्होंने कहा कि सांसदों से मिले स्नेह और विश्वास को वे हमेशा अपनी स्मृति में संजोए रखेंगे। श्री धनखड़ ने कहा कि इस महान लोकतंत्र में उपराष्ट्रपति के रूप में मिले अमूल्य अनुभवों और विचारों के लिए वे बहुत आभारी हैं। श्री धनखड़ ने कहा कि इस दौरान भारत की उल्लेखनीय आर्थिक प्रगति और अभूतपूर्व विकास को देखना और उसमें भाग लेना उनके लिए सौभाग्य और संतोष की बात है। उन्होंने कहा कि देश के इतिहास के इस बदलाव के युग में सेवा करके उन्हें सच्चा सम्मान मिला है।
The first day of the monsoon session of Parliament witnessed several disruptions by the opposition parties over various issues. They were demanding immediate discussion on Pahalgam terror attack and Operation Sindoor, among other issues. Both the houses witnessed uproar after the opposition MPs raised slogans and continuously demanding a discussion over these issues. Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju and Defence Minister Rajnath Singh assured that the government is ready to discuss every issue in Parliament. The Rajya Sabha took up the question hour and special mention and also passed the Lading Bill 2025 after discussion. In another development, several members of Parliament submitted a memorandum to Lok Sabha Speaker Om Birla to remove Justice Yashwant Verma. A total of 145 Lok Sabha members, including from BJP, Congress, TDP, JDU, JDS and CPM, have signed the impeachment motion against Justice Verma. The Parliament will inquire into the matter related to the recovery of cash at the residence of Justice Yashwant Verma.
सरकार ने कहा है कि महंगाई को नियंत्रित करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं और इसके लिए रोजगार के सतत अवसर उपलब्ध कराने और घरेलू आयों में सुधार करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कल लोकसभा में एक लिखित प्रश्न के उत्तर में कहा कि सरकार ने आवश्यक खाद्य वस्तुओं के लिए बफर स्टॉक बढ़ाने, खुले बाजार में खरीदे गए अनाज की युक्तिसंगत बिक्री करने और सब्सिडी दरों पर चुनिंदा खाद्य वस्तुओं की खुदरा बिक्री सुविधा प्रदान करने के निर्णय लिए हैं। सुश्री सीतारामन ने कहा कि इन कदमों के नतीजे सामने आए हैं और परिणाम स्वरूप औसत खुदरा महंगाई दर 2023-24 में 5.4% से गिरकर 2024-25 में 4.6% हो गई है, जो पिछले 6 वर्षों में सबसे कम है।
At least 22 people, school children, were killed and 169 people were injured after a Bangladesh Air Force jet crashed in Dhaka's Uttara area on Monday afternoon. A report.
Bangladesh Air Force F-7 training fighter aircraft crashed soon after it took off from Bir Uttam AK Khandekar Air Base at Kurmitola within Dhaka city. The horrific accident has raised urgent questions as to operating an Air Force base inside one of the most densely populated cities in the world. For many Dhaka residents, the shock of the incident has renewed fears that have long gone unaddressed. Abdullah Farooq, a former Biman Bangladesh captain with decades of flying experience, publicly voiced his concern over the proximity of military flight operations to commercial and civilian zones. Naval Singh Parmar, Akashwani News, Dhaka.
The Indian Space Research Organization, ISRO, will launch the NISAR Earth Observation Satellite, developed jointly with American Space Agency NASA, on the 30th of this month at 1740 hours from Sriharikota. GSLV F-16 heavy lift rocket will place the satellite into a 743-kilometer sun-synchronous orbit. The NISAR satellite will scan the entire globe every 12 days and provide high-resolution, all-weather day and night data. A report.
NISAR, developed jointly with NASA, will be the sharpest eye in the sky. It is the first satellite to observe the Earth with a dual-frequency synthetic aperture radar. NASA's L-band and ISRO's S-band radar will use NASA's large 12-meter unfurlable mesh reflector antenna that is integrated to ISRO's modified satellite. The L-band radar can penetrate thick forests and dense vegetation, while the S-band provides crystal-clear surface details. It will observe Earth using sweeps technology for the first time. These radars can detect subtle changes in Earth's surface to monitor sea ice, vegetation, storm tracking, soil moisture changes, surface water mapping, and disaster probabilities. Sudhindra, Akashwani News, Bengaluru.
बिहार देश का पहला राज्य बन गया है जहां प्रत्येक मतदान केंद्र पर 1200 से कम मतदाता होंगे. निर्वाचन आयोग ने कल ये घोषणा करते हुए कहा कि इस कदम का उद्देश्य लंबी कतारों को कम करना और मतदान प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाना है. इसके लिए पूरे राज्य में 12,817 नए मतदान केंद्र बनाए गए हैं. इससे पहले प्रत्येक मतदान केंद्र पर 1,500 मतदाताओं की सीमा थी, जिसे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के अंतर्गत संशोधित करके 1,200 किया गया है. इसके साथ ही बिहार में मतदान केंद्रों की कुल संख्या अब बढ़कर 90,712 हो गई है. निर्वाचन आयोग ने कहा है कि बिहार में जारी SIR के दौरान अब तक 7,16,00,000 से अधिक गणना प्रपत्र जमा किए जा चुके हैं. आयोग ने बताया है कि 1 अगस्त से मतदाता सूची के मसौदे में कोई भी व्यक्ति किसी मतदाता का नाम जोड़ने, हटाने या सुधार करने से संबंधित आपत्तियां दर्ज करा सकता है.
The Central Board of Secondary Education, CBSE, has mandated the installation of high-resolution CCTV cameras with audio-visual recording in all its affiliated schools to further strengthen student safety. As per the new norms, cameras will be installed at entry and exit points, corridors, staircases, classrooms, labs, libraries, canteens, playgrounds, and other common areas, excluding toilets and washrooms. Today marks the 6th anniversary of the Indian Space Research Organization's Chandrayaan 2 launch. The mission aimed to study the moon's topography, seismography, mineral distribution and surface composition with a focus on the lunar South Pole. A report.
India's second lunar exploration mission, which successfully lifted off on July 22, 2019 from Satish Dhawan Space Center, Sriharikota, primarily aimed to explore the lunar surface, particularly the South Pole, and consisted of an orbiter, lander Vikram, and rover Pragyan. Although the lander faced a setback due to a software glitch resulting in a crash landing on September 6, 2019, the orbiter continues to operate, providing valuable insight into the lunar science and mapping the minerals and water molecules in the polar regions. Chandrayaan 2's legacy serves as a testament to ISRO's capabilities and dedication to space exploration, inspiring future lunar endeavors. Sanyukta Yadav, Akashwani News, Delhi.
अब खबरें खेल जगत की.
शुरुआत करते हैं शतरंज से। जॉर्जिया के बटूमी में फिडे महिला विश्व कप शतरंज 2025 में भारत की ग्रैंड मास्टर दिव्या देशमुख सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। दिव्या ने रैपिड टाई ब्रेक में हमवतन हरिका द्रोणावल्ली को 2-0 से हराया। भारत की कोनेरू हम्पी भी अंतिम चार में पहुंच गई हैं। सेमीफाइनल में दिव्या का सामना चीन की टैंग झोंगोई से होगा, जबकि कोनेरू हम्पी का मुकाबला आज शाम चीन की लेई टिंगजी से होगा। इनमें से शीर्ष तीन खिलाड़ी महिला कैंडिडेट्स टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई करेंगी। और अगर बात करें क्रिकेट की, तो भारत और इंग्लैंड के बीच चौथा टेस्ट मैच कल से मैनचेस्टर में खेला जाएगा। 5 मैचों की श्रृंखला में इंग्लैंड 2-1 से आगे है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने बताया कि ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी घुटने में चोट के कारण इंग्लैंड के साथ एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी के बाकी 2 टेस्ट मैचों के लिए टीम से बाहर हो गए हैं। बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह भी बाएं अंगूठे में गंभीर चोट के कारण चौथा टेस्ट मैच नहीं खेल पाएंगे। इस बीच अंशुल कंबोज को भारतीय दल में शामिल किया गया है। दूसरी तरफ इंग्लैंड ने मैनचेस्टर के लिए अपने 11 खिलाड़ियों की घोषणा कर दी है। शोएब बशीर के स्थान पर लियम डासन को टीम में शामिल किया गया है। इंग्लैंड टीम के बाकी 10 खिलाड़ी वही हैं जो लॉर्ड्स टेस्ट में थे। इसके अलावा फुटबॉल में सैफ अंडर 17 चैंपियनशिप 2025 का ड्रॉ जारी कर दिया गया है। मौजूदा चैंपियन भारत को ग्रुप बी में पाकिस्तान, भूटान और मालदीव के साथ रखा गया है। दूसरी तरफ ग्रुप ए में श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल की टीमें होंगी। ये टूर्नामेंट 15 से 27 सितम्बर तक श्रीलंका में कोलम्बो में खेला जाएगा। और केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से ने कल नई दिल्ली में स्पेशल ओलंपिक भारत फुटबॉल टीम को लगातार दूसरी बार गोठिया स्पेशल ओलंपिक ट्रॉफी जीतने पर सम्मानित किया। श्री खड़से ने कहा कि ये जीत सरकार, कॉरपोरेट और खेल महासंघों की सहयोग शक्ति का प्रमाण है। गोठिया कप में स्पेशल ओलंपिक भारत टीम ने फाइनल में पोलैंड को 3-1 से हराया। खेलों की दुनिया से बस इतना ही।
ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और अब महानगरों के समाचार।
Yes, Manoj, starting with news from Chennai. Tamil Nadu Chief Minister M.K. Stalin was admitted to Apollo Hospitals in Chennai yesterday after experiencing mild dizziness. According to an official statement released by Apollo Hospitals, Dr. Anil B.G., the Director of Medical Services, confirmed that Stalin is undergoing a comprehensive evaluation. Currently, diagnostic tests are being conducted to determine the cause of his symptoms. Chennai Metro Rail Limited, CMRL, will phase out its existing travel cards and migrate entirely to the Singara Chennai National Common Mobility Card from the 1st of next month. From that date, top-up services for the older CMRL travel cards will be discontinued across all 41 metro stations. Other ticketing methods such as QR tickets will remain unchanged. Bengaluru News Now. Nimhan signs MOU to establish a research center for mind-body interventions through yoga. The Central Council for Research in Yoga and Naturopathy, which is functioning under the Ministry of Ayush, has signed this agreement to establish a collaborative research center for mind-body interventions through yoga. The 5-year project aims to bridge traditional Indian healing systems with modern medical science, focusing on evidence-based research in yoga, naturopathy, and the integration into mainstream healthcare. The initiative will also focus on training healthcare professionals and develop standardized protocols for integrative treatment approaches. Hyderabad News Now. Telangana Chief Minister A. Revant Reddy has called on the district collectors and all department heads to remain on high alert to ensure public safety and uninterrupted services in the wake of heavy rains in some parts of the state. In a high-level review meeting through a video conference from Hyderabad last evening, he expressed concern that some parts of the state witnessed heavy rains during the past few days, necessitating immediate preparedness at all levels. Collectors have been instructed to maintain detailed records of damages caused by lightning and to take precautionary measures in ITDA regions to prevent the spread of infectious diseases among tribal population. Over to you now.
अब दिल्ली, मुंबई और कोलकाता के समाचार। पहले दिल्ली की खबर। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने कल स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक की। इस बैठक में स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ पीडब्ल्यूडी, नगर निगम, डीडीए और एनडीएमसी के अधिकारी भी मौजूद रहे। इस बैठक के बाद स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि इस महीने राजधानी में 30 से अधिक नए आयुष्मान आरोग्य मंदिर शुरू होने वाले हैं। उन्होंने कहा कि अगस्त महीने के अंत तक 75 और नए आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाकर दिल्ली के नागरिकों को समर्पित कर दिए जाएंगे। और अब महाराष्ट्र, मुंबई की खबर। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम NCAP के अंतर्गत भारतीय महानगरों में PM10 प्रदूषण के स्तर में मुंबई में सबसे ज्यादा गिरावट दर्ज की गई है। सोमवार को संसद में पेश किए गए आंकड़ों के अनुसार शहर में 2017-18 की तुलना में 2024-25 में PM10 के स्तर में 44% की कमी दर्ज की गई। मुंबई में PM10 की औसत सांद्रता 2017-18 के 161 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर से घटकर 2024-25 में 90 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर हो गई, जो NCAP के तहत निरंतर प्रयासों के कारण वायु गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार को दर्शाता है। अधिकारियों ने इसे प्रदूषण नियंत्रण उपायों के कारगर होने का स्पष्ट संकेत बताया है। उन्होंने कहा कि मुंबई स्वच्छ वायु की दिशा में एक अग्रणी उदाहरण के रूप में उभर रहा है। अब कोलकाता की खबर। भारतीय नौसेना के पनडुब्बी रोधी युद्धक युद्धपोत अजय का सोमवार को कोलकाता के गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड में उद्घाटन किया गया। ये इस प्रकार का 8वां और अंतिम युद्धपोत है। इस पनडुब्बी रोधी युद्धक युद्धपोत का मुख्य उद्देश्य भारत के तट के पास के जल क्षेत्र को दुश्मन की पनडुब्बियों से मुक्त रखना है। वाइस एडमिरल किरण देशमुख की पत्नी प्रिया देशमुख ने कल इस युद्धपोत का उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह में वाइस एडमिरल किरण देशमुख, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड के अध्यक्ष PR हरि सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। और अब महानगरों के मौसम का हाल।
Yes. Chennai is expected to have generally cloudy sky with light rain. Minimum temperature was 27 degrees Celsius. Maximum will be around 32 degrees. Bengaluru is expected to have generally cloudy sky with moderate rain. The minimum temperature was 20 degrees Celsius and the maximum will be around 28 degrees. Hyderabad is expected to have generally cloudy sky with heavy rain. The temperature will hover between a minimum of 23 degrees and a maximum of 30 degrees Celsius.
और बात करते हैं दिल्ली, मुंबई और कोलकाता के मौसम का। दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में बादल छाए रहने और मध्यम वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। और मुंबई की बात करें तो मुंबई में आम तौर पर बादल छाए रहेंगे और तेज बारिश होने के आसार हैं। न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। कोलकाता में आम तौर पर बादल छाए रहेंगे तथा हल्की वर्षा होने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है।
And Manoj, Art Severia on Akashwani FM continues with some events that made this, this day an interesting one, that is 22nd of July. First things first, let's check this one out. You know, our brain controls our entire system, our body, our mind, our total self. In a way, we can call it the command center that takes care of all that we do all that we do throughout our movements and so much more. So we have a special day assigned for the awareness of brain health and neurological disorders that is associated with its functions. So today is the day, friends, when healthcare professionals come together and actively participate in spreading awareness with various campaigns and activities. So that this World Brain Day, let us remember a few pointers. Exercise regularly, eat a balanced, diet, a meal, sleep well, and always remain active, positive, and cheerful.
जी हाँ, और अब आज के इतिहास पर नजर डालते हैं। 1981 में आज ही के दिन भारत के पहले भूस्थिर उपग्रह एपल ने कार्य करना शुरू किया।
1833, the British House of Commons passed the Slavery Abolition Act.
1999 में आज ही के दिन अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा समान कार्य के लिए समान पारिश्रमिक की कार्य योजना लागू की गई।
1933 this day, Veli Post completes the first solo flight around the world, taking 7 days and 19 hours. And July 22nd, 1963 marked the release of the Beatles' first American album, Introducing the Beatles. It featured classic songs like Twist and Shout and I Saw Her Standing There.
2001 में आज ही के दिन G8 देशों का जिनेवा में सम्मेलन संपन्न हुआ। और 2009 में आज ही के दिन 22 जुलाई 2009 का सूर्य ग्रहण 29वीं सदी का 21वीं सदी का सबसे लंबा पूर्ण सूर्य ग्रहण था। 2012 में आज ही के दिन प्रणब मुखर्जी भारत के 13वें राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। और अब बात करते हैं उन महान हस्तियों की जिनकी आज पुण्यतिथि या फिर जन्म दिवस है।
Yes, 1915, July 22nd, anniversary tributes to Sir Sandford Fleming, Scottish surveyor and leading railway engineer who divided the world into time zones. His role in developing the modern system of standard time zones was crucial, you know, for coordinating train schedules and other global activities. So as a youngster, he immigrated to colonial Canada, became the foremost railway engineers of his time. While in charge of the initial survey for the Canadian Pacific Railway, the first Canadian railway to cover the entire continent, he realized the problems of coordinating long rail routes. He was inspired to develop the system after missing a train due to a mix-up in train schedules. So this system with Greenwich, England as the prime meridian, that GMT, was adopted in 1884 and is still in use today. Sir Fleming's idea of time zones earned him the title of father of standard time.
आज पुण्यतिथि है यतीन्द्र मोहन सेन गुप्तो की। उनका जन्म 22 फरवरी 1885 को चटगांव बांग्लादेश में हुआ था। वे भारतीय स्वाधीनता संग्राम के प्रमुख नायकों में से एक थे। उन्होंने 1909 ईस्वी में इंग्लैंड से अपनी बैरिस्ट्री पूर्ण की थी। उन्होंने कोलकाता उच्च न्यायालय में वकालत शुरू की और साथ ही मजदूरों के हित के लिए सदैव कार्य करते रहे। यतीन्द्र मोहन सेन गुप्तो को 5 बार कोलकाता का मेयर चुना गया था। उन्होंने एक अंग्रेज युवती नेली सेन गुप्ता से विवाह किया था, जिसने देश को स्वाधीन कराने के लिए अपने पति के समान ही जेल की सजाएं भोंगी।
1925, birth anniversary of Dasarathi Krishnamacharyalu, was a Telugu writer. He was interested in linguistics and mastered Sanskrit, Telugu, Tamil, Hindi, Urdu, Persian, English languages. He began writing poetry at very young age, when he was just a student. The downtrodden, poor, exploited workers were his subjects in poverty. And for over 50 years, friends, John Mayola served as a pioneer of blues music, rightly earning him the title the godfather of British blues. This Englishman picked up the American blues and made it sound so simple and versatile through his band, the Blues Breakers. Later popularized it in Britain, and again, thanks to him, the British blues rock was born. Mayol passed away this day last year.
आज पुण्यतिथि है मुत्तु लक्ष्मी रेड्डी अथवा मुत्थु लक्ष्मी रेड्डी की। उनका जन्म 30 जुलाई 1886 को मद्रास में हुआ था। वे भारत की प्रसिद्ध महिला चिकित्सक, सामाजिक कार्यकर्ता और पद्म भूषण प्राप्तकर्ता थीं। वे भारत की प्रथम महिला विधायक थीं। उनके ऊपर स्वामी विवेकानंद और महात्मा गांधी के विचारों का बड़ा प्रभाव था। उन्होंने समाज सेवा में, विशेषतः महिलाओं और बच्चों के कल्याण की अनेक योजनाएं आरंभ की थीं। सेवा के अनेक कार्यों के उपलक्ष्य में राष्ट्रपति की ओर से सन 1956 में डॉक्टर मुत्तु लक्ष्मी रेड्डी को पद्म भूषण की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया था।
आइकॉनिक रॉक ड्रमर, सिंगर, फाउंडर मेंबर ऑफ द ऑल अमेरिकन rock band The Eagles, Don Henley celebrates his birthday today. Don Henley has maintained an extraordinary commitment to music and to various philanthropic efforts throughout his career, including a dedication to environmental issues and artists' rights. Born this day in 1947 as Donald Hugh Henley, the Texas native remains popular both on radio and concert halls. A solo one from him called Boys of Summer. Here goes.
आज जयंती है मुकेश की। उनका पूरा नाम मुकेश चंद्र माथुर था। उनका जन्म 22 जुलाई 1923 को दिल्ली में हुआ था। वे भारत के संगीत इतिहास के सर्वश्रेष्ठ गायकों में से एक थे। मुकेश की आवाज की खूबी को उनके एक दूर के रिश्तेदार मोतीलाल ने तब पहचाना जब उन्होंने उन्हें अपनी बहन की शादी में गाते हुए सुना। मोतीलाल उन्हें बंबई ले गए और अपने घर में रखा। यही नहीं, उन्होंने मुकेश के लिए रियाज का पूरा इंतजाम किया। सुरों के बादशाह मुकेश ने अपना सफर 1941 में शुरू किया। निर्दोष फिल्म में मुकेश ने अदाकारी करने के साथ साथ गाने भी खुद गाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने माशुका, आह, अनुराग और दुल्हन में भी बतौर अभिनेता काम किया। उन्होंने सबसे पहला गाना दिल ही बुझा हुआ हो तो गाया था। मुकेश को एक बार राष्ट्रीय पुरस्कार और 4 बार फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
तुम्हारे महल चौपारे यहीं रह जाएंगे सारे, अकड़ किस बात की प्यारे, ये सर फिर भी झुकाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है।
झूम झूम के नाचो आज, नाचो आज, गाओ खुशी के गीत हो, गाओ खुशी के गीत। आज किसी की हार हुई है, आज किसी की जीत हो, गाओ खुशी के गीत।
After those mellow songs, we have one more beautiful song here, birthday of pianist, songwriter, co-founder of British rock band Supertramp, Rick Davies, who shared lead vocals with Supertramp songwriting partner Roger Hodgson until the latter's departure in 1983. Some favorites of Supertramp, of course, include the logical song Goodbye Stranger that you're listening to, Oh Darling, Long Way Home, Breakfast in America, etc.
आज जयंती है विनायक राव पटवर्धन की। उनका जन्म 22 जुलाई 1898 को हुआ था। वे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के गायक थे। पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर के शिष्यों में विनायक राव पटवर्धन अपने समय के महान गायक थे। आज जयंती है चित्रमुर विजय राघवलु श्रीधर की। उनका जन्म 22 जुलाई 1933 को चिथामुर चेंगलपट्टू मद्रास प्रेसिडेंसी में हुआ था। वे एक भारतीय पटकथा लेखक, फिल्म निर्देशक थे। उन्होंने तमिल, हिंदी और तेलुगु भाषाओं में लगभग 60 फिल्मों का निर्देशन किया है।
खुदा भी आसमां से जब जमीन पर देखता होगा मेरे महबूब को किसने बनाया, सोचता होगा। खुदा भी आसमां से जब जमीन पर देखता होगा।
एक मंदिर है,
And friends, today is the birthday of Selena Gomez, American actress and singer who won legions of young fans as the winsome star of the Disney television series Wizards of Waverly Place and as a pop vocalist too. And 1946, this day, Danny Glover, American actor, human rights activist, was born in San Francisco.
और अब समय हो गया है आपसे विदा लेने का। तो अनुमति दीजिए कार्यक्रम आज सवेरे यहीं समाप्त करने की। अगर आप आज सवेरे कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर।
Stay tuned for coming up now with Samachar Prabhat, a Hindi news bulletin, followed by morning news in English at 8:15. Thanks for tuning in, friends. Have a great day. Namaskar.
Namaskar.